ठीक है विलादत शरीफ का जो दिन है उसको तो मनाया जाए, लेकिन जो विलादत का दिन है उसी को मनाया जाए। आप 12 रबीउल अव्वल के दिन को विलादत का दिन समझते हैं और मनाते हैं, हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो विलादत का यौम है वो तो 8 रबीउल अव्वल है। और इस पर थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो फतावा रजविया शरीफ का भी कोई हवाला पेश करते हैं, इसके स्टिकर भी जगह जगह देखे जा सकते हैं। तो क्या है, दुरुस्त क्या है, 12 रबीउल अव्वल है या 8 रबीउल अव्वल है, और क्या करना चाहिए इस हवाले से?
देखिए, जमहूर जो मुअर्रिखीन हैं, सीरत निगार हैं, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत का दिन 12 तारीख ही लिखा है।
ठीक है।
और इस पर अक्सर मुअर्रिखीन का इत्तिफाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ये 12 तारीख को हुई। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने भी कसीर उलमा के हवाले से, जैसे इब्न इसहाक जो मगाजी के इमाम हैं उनके हवाले से, इब्न कसीर के हवाले से, यूं ही इमाम ज़ुरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के हवाले से इस बात को नकल किया कि इस पर मुअर्रिखीन की अक्सरियत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत का दिन ये तारीख जो है वो 12 तारीख है, कि हुज़रत अलैहिस्सलाम रबीउल अव्वल की 12 तारीख को दुनिया में जलवागर हुए। और ये कुतुब पढ़ने वाले, सीरत की किताबें पढ़ने वाले अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस कदर कसरत के साथ इसको बयान किया गया है। बुनियादी एतबार से जो आपके सवाल का जुज है वो ये है कि अब जैसे मिसाल के तौर पे दलाइल बयान हुए
जी जी।
तो ऐसे दलाइल काहिरा हमारे उलमाए अहले सुन्नत एक अरसे से बयान करते हुए आ रहे हैं, यानी ये सिर्फ इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाही तलाले नहीं, बल्कि इससे पहले आप जाएं तो कसीर उलमा की तादाद है कि जिन्होंने मीलाद शरीफ के ऊपर किताबें तहरीर फरमाई हैं और उसमें उन्होंने मीलाद के जवाज पर दलाइल दिए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फिर उसके बाद दीगर से मीलाद मनाने का सबूत ये मौजूद है। अब होता यह है कि बाज लोग जब इन दलाइल का जवाब देने से आजिज आ जाते हैं तो फिर नतीजा ये निकलता है कि वो बेसरोपा बातें करना शुरू करते हैं, झूठ का सहारा लेना शुरू करते हैं। अब इसी तरह एक पंपलेट बनाया गया, स्टिकर लगाए गए और फतावा रजविया की तरफ इस बात की निस्बत की गई कि इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो मीलाद का दिन लिखा है, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन लिखा है, वो 8 रबीउल अव्वल लिखा है, ये मशहूर किया गया। फतावा रजविये की 26वीं जिल्द का इस हवाले से हवाला दिया जाता है। तो अब मसला ये है कि मैं इसको बयान करने से पहले एक दो मिसालें अर्ज करता हूँ। बड़ी मशहूर मिसाल दी जाती है कुरान पाक के हवाले से कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला। इसका माना इतना बनता है कि ए ईमान वालों, नमाज के करीब ना जाओ। अब फकत इतने हिस्से को लेकर कोई ये इस्तदलाल करना शुरू कर दे कि नहीं जी, नमाज पढ़ने की तो अल्लाह तबारक व तआला ने ममानात फरमाई है, तो वो इतनी बात करके तो वो ये अपनी दलील से साबित कर देगा कि नमाज पढ़नी नहीं चाहिए। हालांकि आगे कैद मौजूद है, यानी तुमने नमाज के करीब उस वक्त नहीं जाना जबकि तुम नशे की हालत में हो, नशा दूर होना जरूरी है, इसके बाद ही तुम नमाज के करीब जा सकते हो। तो अब अगर कोई शख्स फकत इसी जुज को लेके इस्तदलाल करता रहे और ये कहता रहे कि जी नमाज के करीब नहीं जाना चाहिए, तो यकीनन उसको बेवकूफ कहा जाएगा, उसको झूठा कहा जाएगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी अहादीस तय्यबा में बाज मौके पर यह इरशाद फरमाया, हमारी मस्जिद के करीब ना आए, फला यक़रबन्ना मस्जिदना। इसी तरह एक मकाम पर फरमाया कि वो हमारी ईदगाह से दूर रहे। अब फकत इसी को कोई ले और कहे कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मस्जिद के करीब ही नहीं जाना चाहिए, इसी तरह ये ले और कहे कि ईदगाह के पास ही नहीं जाना चाहिए, लिहाजा ईद की नमाज पढ़नी नहीं है, नमाज अदा करनी नहीं है, तो उससे ये कहा जाएगा कि आप माकबल को तो देखिए कि पहले बात क्या कही गई है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में आने से उस वक्त मना फरमाया कि पहले अल्फाज है कि जिसने इस लहसन के दरख्त से खाया है तो वो इस खाने के बाद मस्जिद के पास नहीं आएगा, कि मुंह से बू आ रही है, बदबू आ रही है, तो मस्जिद के पास आना उसका मना होगा। इसी तरह नाराजगी का इजहार उस शख्स के लिए किया कि जो इस्तेताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता, उसके लिए फरमाया कि वो हमारी ईदगाह के पास ना आए, और ये भी बतौरे तहदीद के, बतौरे डराने के और वईद बयान करने के लिए है। तो फकत इसको लेके कोई इस्तदलाल करना शुरू कर दे तो जाहिर सी बात है कि ये एक झूठ का सहारा लेना होगा। तो यही बात इन हजरात ने ये की कि जब दलाइल के जवाब देने से वो आजीज आ गए तो अब इन्होंने झूठ का सहारा लिया, एक गलत अंदाज इख्तियार किया कि जी फतावा रजविया के अंदर तो ये मौजूद है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने ये इरशाद फरमाया है कि 8 तारीख ये पैदाइश का दिन है। तो अगर फतावा रजविया के उस मकाम को उठा के कोई भी देख ले, उस मकाम पे इमाम अहले सुन्नत ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत के हवाले से علماء کے اقوال لکھے ہیں کہ یہ اقوال ہیں علماء کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 2 تاریخ کو ہوئی، 8 تاریخ کو ہوئی، 17 تاریخ کو ہوئی، 12 تاریخ کو ہوئی، اس طرح مختلف اقوال لکھے ہیں کہ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اقوال ہے، اور اسی سے متصل پھر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مورخین کے حوالے سے، سیرت بیان کرنے والوں کے حوالے سے اس بات کو تحریر فرمایا کہ صحیح جو بات ہے، صحیح جو تاریخ ہے جس پر اتفاق ہے، جس کے اوپر اکثر ہیں، جس پر جمہور ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ 12 تاریخ ہے. تو اب اس جس کو تو لے لیا کہ مختلف اقوال ذکر کیے ہیں جس میں سے 8 تاریخ بھی ہے، لیکن آگے امام اہل سنت بیان کیا کر رہے ہیں اس کو لیے بغیر چھوڑ دیا،
اپنا موقف کیا ہے؟
بالکل. تو یہ تو جھوٹ کا سہارا ہوا نا، کہ اس طرح جھوٹ کا سہارا لے کے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہار مان لی کہ آپ کے پاس ان دلائل کا جواب نہیں ہے کہ جن کے ذریعے سے میلاد کا ثبوت ہوتا ہے، ولادت کے دن خوشی منانے کا ثبوت ہوتا ہے، ان کا آپ جواب نہیں دے سکتے، اس لیے آپ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں. ایسا کوئی موقف امام اہل سنت کا نہیں ہے. آپ نے اقوال ذکر کیے ہیں اور اپنا موقف جو جمہور مورخین کا ہے وہ یہی بیان کیا کہ آپ 12 تاریخ کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے.
اور ماشاءاللہ جو امت مسلمہ ہے اس کا بھی عمل اسی پر نظر آتا ہے، 12 ربیع الاول
ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ اسی پر عمل ہے. اگر بالفرض چلیں، مان لیں 8 تاریخ ہے، تو 8 تاریخ کو بتا کے آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ دن منانا ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ 8 تاریخ کو خوشیاں منا لیجیے. لیکن ایسے لوگ 8 تاریخ کو بھی خوشیاں مناتے نہیں. اصل مقصد لوگوں کے دل کے اندر وسوسے ڈالنا، لوگوں کو تشویش کے اندر مبتلا کرنا ہے، ورنہ وہ 8 اور 12 سے ان کا کوئی تعلق نہیں کہ 8 تاریخ کو ولادت تھی یا 12 تاریخ کو ولادت تھی. اصل مقصد لوگوں کو جشن ولادت سے یہ دور کرنا.